वही आस्था को अरमान की फिर से वही सारी बातें सुनकर उसे रोना आ गया था और वो सोचने लगी, क्या भगवान जी, हाँ हम मानते हैं कि हमने आज परिक्रमा पूरी नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हमें इसकी इतनी बड़ी और भयंकर सजा दें। आखिरकार हमारा कसूर क्या है भगवान जी, हमने क्या किया है? आस्था ऊपर की ओर देखकर खुद से बातें करने लगी थी। वही अरमान, जो कि मेंशन में प्रवेश ही करने वाला था, अचानक रुका। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर आस्था की ओर देखा, जो कि ऊपर आसमान की ओर देखकर बातें कर रही थी, उसने तुरंत अपने सर पर हाथ मार लिया और सोचने लगा कि इस आफत ने एक बार फिर से मेरी शिकायतों का पिटारा अपने भगवान के सामने खोलकर बैठ गई है। अब अरमान जल्दी से दरवाजे से वापस आया और सीधा आस्था के सामने खड़ा होकर कहने लगा, हो गया तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी शिकायतें? अब अगर तुम्हारी शिकायत और तुम्हारा ड्रामा खत्म हो चुका हो तो क्या अब हम अंदर चल सकते हैं? तब आस्था सोचने लगी, लगता है कान्हा जी ने इन्हें मन पढ़ने की भी शक्ति दे रखी है। क्या कान्हा जी, ये तो आपको मानते भी नहीं हैं, फिर भी आप इन्हीं की ओर रहते हैं। आखिर आपको क्या हो गया है? और आप तो जानते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी आप इनसे हमें नहीं बचाते हैं। अब आस्था को एक बार फिर ये सब सोचते हुए देखकर अरमान पूरी तरह से चिढ़ गया था और आगे बढ़कर एक बार फिर उसने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था। अब आस्था की आंखें फिर से हैरत में फैल गईं और वो जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों बार बार हमें छोटे बच्चों की तरह गोद में उठा लेते हैं? हमारे कान्हा जी ने हमें दो पैर दिए हैं, हम उनसे चल सकते हैं, समझे आप? आप हमें अभी नीचे उतारिए, ऐसा कहकर आस्था अरमान से बहस करने लगी। लेकिन अरमान उसकी बातों से और भी ज्यादा चिढ़ रहा था और फिर बोलने लगा, अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान जी ने दो पैर दिए हैं तो तुम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मेंशन आ चुका है? तो तुम्हें अंदर आना चाहिए, ना कि यहां पर खड़े होकर अपने भगवान जी से बातें करनी चाहिए, समझी तुम? अब चुपचाप से चलो मेरे साथ, गोद में ही रहो, ऐसा कहकर अरमान ने आस्था को कसकर पकड़े रखा था और उसे लेकर जाने लगा था। लेकिन आस्था अरमान के साथ इस तरह से अंदर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने दो से तीन मुक्के उसकी मस्कुलर चेस्ट पर मारना शुरू कर दिया था और उसे नीचे उतारने के लिए उससे लड़ने लगी थी। आस्था और अरमान को इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि इस वक्त चार लोग बड़े ही हैरान होकर उन दोनों को देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। वो लोग कोई और नहीं बल्कि आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव थे, जो कि इस वक्त बालकनी में थे और वे चारों एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र आस्था और अरमान पर पड़ी तो चारों हैरानी से उनकी नोकझोंक देखने लगे थे। और तब सुमित कहने लगा, लगता है अपने डेविल किंग का काम तो हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब अपना डेविल किंग कभी किसी की जान ले पाएगा, क्योंकि प्यार में पड़ा हुआ इंसान कभी किसी की जान नहीं ले सकता है। अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, तीनों के तीनों हैरानी से सुमित की ओर देखने लगे थे। ये उनके लिए दूसरा झटका था, क्योंकि सुमित ने आज तक उनसे इस तरह की बातें कभी नहीं की थी, क्योंकि सुमित हमेशा से ही एक सपाट चेहरा लिए रहता था। लेकिन आज इस तरह से सुमित के बोलने पर बाकी तीनों ने मुंह खोले हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। सुमित ने, जो कि लापरवाही से ये सारी बातें बोल गया था, अचानक से जब उसे अपने ऊपर गहरी नजरें महसूस हुईं तो उसने उन तीनों की ओर देखा और फटाफट से अपनी बात बदलते हुए कहने लगा, मेरा मतलब है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारे डेविल किंग को अब आस्था से प्यार हो गया है और अब मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोई अपराध कर पाएगा। तब ध्रुव आंखों के इशारों में सुमित की ओर देखकर कहने लगा, अच्छा सुमित भैया, आप तो प्यार के बारे में दर्शन ऐसे झाड़ रहे हो जैसे कि आपने प्यार में PhD कर रखी हो, बताइए ना कौन थी वो, क्योंकि इतना तो हमें आपकी बातें सुनकर समझ में आ गया है कि प्यार ने आपकी जिंदगी में दस्तक जरूर दी होगी। अब ध्रुव के ऐसा कहने पर सुमित कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और अचानक से एक अनजाना सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया था। लेकिन अगले ही पल वो अपने भावहीन चेहरे के साथ बोला, बच्चों, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मेरे मामले में दखल नहीं देना चाहिए, और मैंने जो देखा वही बोला है, ऐसा कहकर वो ध्रुव के गाल पर थप्पड़ लगाने लगा था। तब ध्रुव ने कहा, सुमित भैया, I'm so sorry, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसा कहकर आहान और ध्रुव वहां से चले गए थे और जाते हुए कहने लगे, आस्था भाभी आ गई, हम जाकर उनसे मिल लेते हैं, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब तक आप दोनों आगे की योजना तैयार कर लीजिए। तब आकाश चिढ़कर कहने लगा, इन दोनों को तो बस काम से बचने का कोई ना कोई बहाना ही चाहिए। तब सुमित बोला, यार, अब तुम इन दोनों को छोड़ो, इनमें बचपना है अभी भी। और हाँ, मैंने सारी चीजें अच्छी तरह से पता कर ली हैं। आज रात को ही पानी के जहाज के द्वारा ही वीर रायचंद का ड्रग्स इम्पोर्ट होकर आ रहा है, और हमें हर हाल में उसे ड्रग समेत उसके आदमियों को उस पानी समुद्र में ही उनकी समाधि दे देनी है। ऐसा कहकर सुमित बड़ा ही क्रूर लग रहा था। एकदम से वो एक राक्षस रूप में लग रहा था। आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, हम वो ड्रग्स कभी भी नौजवानों तक पहुंचने नहीं देंगे। दोनों कुछ सोचते हुए वे अपना कल रात का प्लान तैयार करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर आस्था के अरमान की छाती पर मारे जाने वाले मुक्कों से भी अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ा था, और जल्दी ही उसने आस्था को मेंशन के दरवाजे के ठीक सामने लाकर उसे खड़ा कर दिया था और कहने लगा, अब चुपचाप करके अंदर चलो।